और अगर हम कहें कि हमें याद है कि उन्होंने हमें आपसे जुड़ी कोई बात नहीं कही थी और उन्होंने जो भी कहा था हमने सब बनाया था, हमें नहीं पता कि उस वक्त उन्होंने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने हमें आपके लिए चीला बनाने को कहा था, तो क्या आप हमारी बात का विश्वास करेंगे? उन बड़ी बड़ी आंखों में एक उम्मीद थी और साथ ही मौजूद था एक डर कि शायद अक्षय उसकी सच्चाई पर विश्वास करने की बजाय अपनी माँ पर भरोसा करे। शायद ये बात उनके इस नए नए जुड़े रिश्ते में आई दरार की वजह बन जाए, कहीं अक्षय उसे गलत न समझ ले, ये भय उसके दिल को व्याकुल कर गया था। पर अक्षय ने गंभीरता से जो जवाब दिया उसने उसके हर डर और भय का अस्तित्व ही मिटा दिया। क्यों नहीं करूँगा विश्वास, बिल्कुल करूँगा। अगर आपको अच्छे से याद है कि मम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया था तो हो सकता है कि मम्मी आपको बताने वाली हों पर किसी काम में उलझकर उनके ध्यान से निकल गया हो, उन्हें लगा हो कि उन्होंने आपको बता दिया है इसीलिए तब वो आप पर नाराज़ हो गईं। अभी कितने काम फैले हैं और उनकी उम्र भी बढ़ गई है, हो जाता है ऐसा कभी कभी, इसीलिए अब आप उस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। चलिए अब फटाफट से मुस्कुरा कर दिखाइए, सुबह से मैं आपके लबों पर मुस्कान देखने को तरस गया हूँ। अक्षय के विश्वास जताने के बावजूद कुछ था जो हाना के मन में खटक रहा था, पर उसने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हल्की मुस्कान अपने लबों पर सजा ली। ऐसे ही मुस्कुराती रहा कीजिए, मैं आपके चेहरे पर दुख, मायूसी या उदासी नहीं, खिली हुई मुस्कान और खुशी देखना चाहता हूँ। अहाना ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। अक्षय ने आगे बढ़ते हुए अपने प्रेम से लबरेज लबों का चिन्ह उसके माथे पर अंकित कर दिया और इस मीठे मीठे एहसास में उलझी अहाना ने अपनी पलकें झुका ली। कुछ देर बाद दोनों के लिए बुलावा आया। अहाना ने चेहरे को घूंघट से ढककर एक आदर्श बहू की तरह जाने वाले मेहमानों के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब उसी दिन चले गए थे और बाकी लोग अगली सुबह जाने वाले थे। बस रूपाली जी की बहन कुछ और दिन रुक गई थी। फलक को भी अगली शाम सुमित लेने आने वाला था। सारे दिन की थकी हारी अहाना बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में समा गई थी, जबकि अक्षय उस वक्त तक अन्वय के साथ था। जब वो कमरे में आया तब तक अहाना गहरी नींद में सो चुकी थी। अक्षय भी बिना आवाज किए उसके बगल में आकर लेट गया। अगली सुबह एक बार फिर अहाना सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। अक्षय उस वक्त तक सोया हुआ था। पूजा करने के बाद वो रसोई में पहुंची। उसने सबके लिए चाय बनाई। इतने में धीरे धीरे बाकी सब भी उठ गए। फलक सबको चाय नाश्ता देने चली गई, जबकि अहाना खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। अहाना, रूपाली जी की सख्त आवाज कानों में पड़ते ही अहाना एकदम से सतर्क हो गई। अपने सर से ढलकता आंचल ठीक करते हुए वो तुरंत ही उनकी ओर मुड़ी। जी मम्मी जी, कुछ कपड़े छत पर निकाल कर रखे हैं धोने को, शादी में धोने का वक्त नहीं मिला। यहाँ का काम हो जाए तो उन्हें धो देना, ड्राई क्लीन वाले अलग निकाल देना, हाथ से धोने वाले कपड़ों को मशीन में मत डालना वरना खराब हो जाएंगे, और ध्यान रहे कि एक कपड़े का रंग दूसरे में ना चढ़ जाए वरना इतने महंगे महंगे कपड़े दोबारा पहनने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने अहाना को अच्छे से निर्देश दिए और लहजा अब भी सख्त ही रहा। अहाना ने सिर झुकाते हुए हामी भर दी। जी हम धो देंगे, उससे पहले अपने गहने निकाल देना, जो पहनना है उसे छोड़कर बाकी गहने अक्षय को कहकर बैंक के लॉकर में जमा करवा देंगे। घर में इतने गहने रखना ठीक नहीं, बैंक में सुरक्षित रहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी निकलवा लेंगे। जी अच्छा, हम निकाल कर रख देंगे। अपनी बात कहकर रूपाली जी वहां से चली गई। अहाना वापस नाश्ते की तैयारी में लग गई। ब्रेकफास्ट के बाद बाकी बचे खुचे मेहमान भी रवाना हो गए। अब बस रूपाली जी की बहन ही बची थी। अहाना नीचे का काम निपटाने के बाद छत पर पहुंची तो वहां कपड़ों का ढेर लगा था। कुछ नए कपड़े थे और शादी की रस्मों में पहने गए थे, कुछ पुराने थे और अब उसे उस ढेर में से सब तरह के कपड़ों को अलग अलग करना था। अहाना ने साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर काम में लग गई। ड्राई क्लीन करवाने वाले कपड़ों को उसने निकालकर अलग रखा, आम दिनों में पहने जाने वाले कपड़ों को अलग निकाला जो मशीन में धोए जा सकते थे, और हाथ से धोने वाले कपड़ों को छांटकर अलग किया। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अहाना धोने के लिए कपड़े भिगो ही रही थी कि उसे ढूंढते हुए फलक वहां पहुंच गई। उसे वहां आते देखकर अहाना ने हड़बड़ी में पल्लू कमर से निकालकर सिर पर रखते हुए जवाब दिया, बहुत सारे कपड़े रखे हैं धोने को, वही धोने जा रही थी। फलक ने निगाहें घुमाकर कपड़ों के ढेर को देखा और आंखों की पुतलियां फैलाते हुए हैरत से बोली, ये इतने सारे कपड़े आप धोने वाली हैं? किसने कहा आपको ये करने? पहले वो हैरान थी पर आखिरी के सवाल को करते हुए उसकी त्योरियां चढ़ गई थी। साफ जाहिर था कि उसे ये बात नागवार गुजरी थी। मम्मी जी ने कहा कि शादी की वजह से कपड़े नहीं धोले तो हम धो दें। अहाना का जवाब सुनते ही फलक के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। रूपाली जी पर उसे इस वक्त शिद्दत से गुस्सा आया और वो मन ही मन खींचते हुए बोल पड़ी, क्या करती हो माँ, भाभी को घर आए 2-3 दिन ही हुए हैं और सारा काम उनके भरोसे छोड़ दिया। पहले 2 दिन की दुल्हन से रसोई का सब काम करवाया और अब इतने सारे कपड़े धोने भेज दिया। थोड़ी इंसानियत ही दिखा ली होती, नई बहू को कोई ऐसे टॉर्चर करता है? जाने किस बात का बदला निकाल रही हैं आप भाभी से, और ये इतनी भोली है कि चुपचाप सब सह रही है। अगर यही हाल रहा तो क्रूरता में मेरी सास को भी पीछे छोड़ देंगी, जाने भाभी कैसे सब बर्दाश्त करेंगी। फलक को आहाना की चिंता सताने लगी थी। उसने बेबसी व अफसोस से सिर हिलाया, फिर अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर खोसते हुए बोली, आंचल छोड़ो भाभी, मेरे सामने आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, और आइए दोनों ननद भाभी मिलकर जल्दी से सब कपड़े धो लेते हैं। आप क्यों धोएंगी? हम धो लेंगे। आपको जाना है तो आप अपना सामान पैक कर लीजिए, अपने परिवार संग वक्त बिताइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। आहाना ने घबराते हुए उसे रोकना चाहा, पर फलक ने जो जवाब दिया उसके बाद वो कुछ कह ना सकी। भाभी यकीनन आप कर लेंगी, पर मेरे रहते आप इतना काम अकेले करें ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज चली जाऊंगी मैं, उसके बाद तो सब आपको ही संभालना है। जब तक हूँ तब तक तो आपकी मदद कर दूं। और आप चिंता मत कीजिए, पैकिंग में कर चुकी हूँ और अब से आपकी मेरे परिवार का हिस्सा है। सबके साथ साथ मुझे आपके साथ भी वक्त बिताना है, इसीलिए जल्दी से यहाँ का काम कीजिए, फिर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आहाना ने अब उसकी बात मान ली और दोनों मिलकर कपड़े धोने लगे।